मानव ड्राइंग रूम में टहलते हुए नित्या के बाहर आने का वेट कर रहा था। अचानक ही नित्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ओवरसाइज टी शर्ट जो उसके कंधों से नीचे भाग रही थी और घुटने के हल्का ऊपर तक आ रही थी, नीचे से हाफ पैंट जो उसे लगभग पूरी ही आ रही थी। असल में वो मानव के घर में पहनने वाले कपड़े थे जो उसे ही बड़े और ढीले थे। नित्या पर तो ऐसे लग रहे थे जैसे लकड़ी के ढांचे पर कपड़े टांग दिए हों। मानव की नज़र उस पर गई तो उसके होश उड़ गए। अगले ही पल उसके ठहाकों की आवाज़ बुलंद हुई। उसके बाद तो नित्या की शक्ल देखने लायक थी। वो आंखें बड़ी बड़ी करके कभी उसे देखती तो कभी खुद को। आखिर में उसने निचले होंठ को बाहर निकाला और मुंह बिचकाते हुए बोली, तुम मुझे देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हो?
सॉरी, मैं हंसना नहीं चाहता, पर मेरी हंसी रुक नहीं रही, मानव ने किसी तरह इतना कहा और एक बार फिर ठहाके मारकर हंस पड़ा। अगले ही पल पीठ पर जोर का थप्पड़ लगा और मानव के मुंह से सिसकी निकल गई।
अब हंस नालायक, बेचारी बच्ची रोने पर आ गई और तेरी हंसी नहीं रुक रही? अनीता जी गुस्से से भड़की। मानव जो अपनी पीठ सहलाते हुए नाराजगी से उन्हें देख रहा था, अब उसका ध्यान नित्या पर गया जो आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे रोने को तैयार खड़ी थी। अब उसे देख क्या रहा है, चल माफी मांग अभी उससे। एक तो इतने बड़े कपड़े दे दिए उसे और बच्ची का मजाक उड़ाकर उसका दिल दुखा दिया। फटकार के साथ एक और झापड़ लगा था पीठ पर। नित्या के आंसू देखकर जितना बुरा लगा था अब सब खींच में बदल गया। मेरी आई हैं, आप शायद भूल गई हैं, तब से देख रहा हूँ मुफ्त का ढोल समझकर बजाई जा रही हैं। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बेटा है, चोप भी लग रही होगी, अभी और मार खाएगा, माफी मांगता है कि नहीं? आंखों से धमकी दी और हाथ उठाकर दिखाया। मानव बुरी तरह चिढ़ गया।
सॉरी,
मानव ने बेमन से कहा, नित्या को देखा तक नहीं और सीधे बाथरूम में घुस गया। नित्या अब भी मुंह लटकाए खड़ी थी। तुम क्यों उसकी वजह से अपना दिल छोटा कर रही हो? बस आज आज की बात है, कल ये खुद तुम्हें तुम्हारी पसंद के कपड़े दिलाकर लाएगा, और अगर अब ये दोबारा तुम पर हंसा या तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें कुछ कहा तो सीधे आकर मुझे बताना, मैं इसकी अकल ठिकाने ला दूंगी। चलो मेरे साथ चलो, भूखी होगी, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मानव जब हाथ मुंह धोकर बाहर आया, अनीता जी अपने हाथों से नित्या को खाना खिलाते हुए उससे बात करती नजर आईं। दोनों ही मुस्कुरा रही थीं। पल भर को मानव की नज़रें ठहरीं और दिल में जैसे किसी ख्वाहिश ने सर उठाया। अगले ही पल मानव ने सर झटका और मन ही मन बड़बड़ाते हुए उनके तरफ बढ़ गया। ये आई भी ना, एक अनजान लड़की पर इतना प्यार लुटा रही हैं, अपना खुद का बेटा उन्हें याद नहीं, थोड़ी देर में इतना मोह लगा लिया है, जब चली जाएगी तो उदास हो जाएगी। आई, मेरे लिए भी कुछ खाना है, मुझे भी भूख लगी है, मानव ने हल्की नाराजगी और तंज भरे स्वर में कहा। लेकिन अनीता जी ने तो उसे देखा तक नहीं, नित्या को खिलाते हुए उखड़े स्वर में बोली, किचन में रखा है, जाकर लेकर खा ले।
बहुत अच्छा, थोड़ी देर पहले जिस लड़की से मिली उसे हाथ से खिला रही है, और अपने बेटे को खाना निकालकर भी नहीं दिया जा रहा। ये याद नहीं कि उसे कुछ दिनों में जाना है, उसके बाद अपने इसी नालायक बेटे के साथ रहना है जिसे अभी इग्नोर कर रही है।
मानव किलस गया, दिल ही दिल में भड़कते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अनीता जी और नित्या ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही मुस्कुरा उठी। पकड़ो इसे, जहाँ जहाँ खरोच या चोट है इसे लगा लेना, बर्फ से सेकने के बाद ये दवाई सर पर लगा लेना। मानव ने दो ट्यूब नित्या की तरफ बढ़ाई जो सूती कपड़े में बर्फ के टुकड़ों को लपेटकर अपना माथा सेक रही थी। वो अब भी नाराज थी जो पलटकर कोई जवाब ही नहीं दिया, बस अपनी नजरें उस पर से हटा ली। मानव ने ठंडी सांस छोड़ी। लगाकर मुझे दे जाना, नित्या ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। मानव भी अब वहां नहीं रुका और वापस अपने रूम में चला गया। नित्या दोनों ट्यूब लेकर अनीता जी के रूम में चली गई। चेहरे, गर्दन, हाथ पैर पर कई जगह खरोचे थी। नित्या ने दवाई लगाई, माथे पर थी दवाई लगाई, हल्के हाथ से मसाज की, फिर हाथ धोया और मानव के रूम के बाहर आकर खड़ी हो गई। मानव एक बार फिर अपनी टी शर्ट उतारकर मिरर के सामने खड़ा था और अपनी पीठ को देख रहा था। बीच में एक बार जब मानव दो गुंडों को संभालने में बिजी था, एक नित्या की तरफ पढ़ने लगा था, और जब मानव उसे रोकने गया तब उसकी पीठ पर दो चार डंडे बरसा दिए थे। दर्द हुआ था, लेकिन उस वक्त मानव ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम नित्या को बचाना उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन अब पता चल रहा था कि कितनी जोर की लगी थी। पीठ पर कई गहरे निशान बने थे जिनमें बेहिसाब दर्द हो रहा था। राइट हाथ उठाने में भी उसे थोड़ी तकलीफ हो रही थी। रूम का गेट नॉक हुआ तो मानव ने फटाफट टी शर्ट वापस पहन ली। जाकर गेट खोला, सामने नित्या खड़ी थी। अंदर आ जाओ, मैं कुछ काम है, नित्या ने धीरे से सर हिला दिया। मानव बिना कुछ कहे सामने से हट गया और वो अंदर आ गई, लेकिन मानव ने दरवाजा बंद नहीं किया, आधा खुला ही छोड़ दिया। नित्या हाथ में दोनों ट्यूब पकड़े नजरें झुकाए खड़ी थी और मानव गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। ये नित्या कुछ अलग सी लग रही थी, ऐसा ठहराव, झुकी नजरें, चेहरे पर झिझक, अब तक ऐसे तो नहीं देखा था उसने उसे। कुछ कहना है तुम्हें? तुम्हें बहुत सारी चोट लगी है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, नित्या ने अचानक से नजरें उठाई। उसकी बात सुनकर मानव जरा चौंका। अचानक ही उसे याद आया कि इससे पहले जब नित्या रूम में आई थी तब वो शर्टलेस था और पीठ गेट की तरफ थी, तो शायद देख लिया हो। इतनी भी नहीं लगी है, लाओ दो दवाई, नहीं, मैंने देखा था तुम्हारी पीठ पर बहुत सारे निशान थे। तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक बार डॉक्टर से चेक करवा लो। नित्या उसके लिए परेशान हो रही थी, उसकी फिक्र कर रही थी। मानव के होंठ हल्के से खिंच गए। कल चला जाऊंगा डॉक्टर के पास, अब तो दवाई दे दो। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं, चोट सच में ज्यादा लगी है और पीठ पर है। रिस्क लेना ठीक नहीं है, अभी लापरवाही की तो आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं कल खुद जाने वाला था डॉक्टर के पास। एक बार वो चेक कर लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। नित्या को विश्वास हो गया कि मानव सच बोल रहा था। उसने दोनों ट्यूब उसे दे दी। इसके अलावा कुछ कहना है तुम्हें? नित्या हाँ कहने वाली थी पर फिर इनकार में सर हिला दिया। तुम दवाई लगा दो, मैं जा रही हूँ। नित्या चली गई। मानव का ध्यान ही नहीं गया कि डोर अब भी खुला है। उसने अपनी टी शर्ट उतार दी, पहले ऑयलमेंट को गर्दन पर लगाया, यहाँ चेन का निशान मौजूद था, फिर मिरर में देखकर पीठ पर लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हाथ पहुंच नहीं रहा था और सीधे शोल्डर की तरफ लगी थी तो ठीक से हाथ मोड़ भी नहीं पा रहा था। मानव कोशिश कर करके हार गया और आखिर में थमकर दवाई रखकर टी शर्ट वापस पहनने ही वाला था कि नित्या की झिझक भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं लगा दूं दवाई? मानव चौंकते हुए पलटा। नजर जैसे ही गेट के पास खड़ी नित्या पर गई, उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। बताओ क्या हुआ है, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? इनाया क्या होंठ फड़फड़ाए, चेहरे पर घबराहट के भाव उभरे। वो कहने ही वाली थी कि अचानक कायरव का फोन बजा। स्क्रीन पर दिखते नंबर को देखकर कायरव की आंखें खतरनाक अंदाज में सिकुड़ गईं। वो तेज कदमों से चलते हुए सीधे रूम से बाहर निकल गया। इनाया और उसकी बात अधूरी ही रह गई। कायरव स्टडी रूम में आकर रुका, फोन एक बार रुकने के बाद फिर से बजने लगा था।
कायरव ने गहरी सांस छोड़ते हुए अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लिया, लेकिन उसका चेहरा अब भी कठोर था और भौहें तनी हुई थीं। कायरव ने कुछ सेकंड रुकने के बाद कॉल पिक करते हुए फोन कान से लगाया। टू बी कंटिन्यूड।